छोटा सा एक वाकया, हिजबुल्लाह वो ऑपरेशन करने वाली थी जिसमें लुबनान से अमेरिकन मैरीन्स के हेडक्वार्टर पे बम धमाका किया गया था और उनको वहां से निकाला गया था। सही है, इंपॉर्टेंट है या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें कई अमेरिकन मैरीन्स मरे थे, मेरे ख्याल में शायद 82-84 ऐसी कहीं की दास्तान थी, या शायद उसकी बात 84 की बात की थी। बहुत सारे अमेरिकन मैरीन्स मरे थे, ठीक है। उसके बाद अमेरिकन वहां से चले गए थे, फिर आज तक लुबनान में नहीं आ सके, बेरूत नहीं आए फिर वो मैरीन्स। अच्छा, मैरीन्स जो होती है वो सिलेक्टेड फौज होती है, जिसको अब आजकल के जमाने में सील कहते हैं, SEAL। वो लोग वहां पर स्टेशन हुए हुए थे। अच्छा साहब, सारा मंसूबा तैयार हो गया, ये हिजबुल्लाह का एक बंदा सुनाता है एक बात के बाद में, कहने का सारा मंसूबा तैयार हो गया, वो ट्रक जिसने जाके अपने आप को मारना था वो भी तैयार हो गया। अच्छा, इसमें और खुदकश बमबार में जो मस्जिदों पर हमला करते हैं कोई फर्क है या नहीं है? क्यों, ये भी तो खुदकश है। हाँ, वो अंदर आए हुए दुश्मन को मार रहा है या अपने ही भाई का गला काटता है? वो अमेरिकन मैरीन को मारने आया था जो उसके मुल्क के अंदर तजावुज करते हुए अंदर घुस के आ गए थे, उसको मारने गया था ना, कि अपने भाई को मारने गया। साहब वो ये ट्रक भी तैयार है, सारा ऑपरेशन बिल्कुल तैयार हो गया है, मैरीन अंदर हैं, ये जाने लगता है, इसका काम ये है कि वो दरवाजे के ऊपर हमला करेगा, ट्रक को लेकर अंदर घुसेड़ देगा, जाके बम धमाका कर देगा, मामला खत्म हो जाएगा। जब ये ट्रक लेके बिल्कुल एंड पे पहुंचने लगा तो इसने रिपोर्ट की कि सर एक प्रॉब्लम आ गई है, दरवाजे पे एक खातून खड़ी है जिनका मैरीन से कोई ताल्लुक नहीं है, लुबनानी खातून है, घर से बेपर्दा है, बेपर्दा है, लेकिन है लुबनानी, ट्रक मारूं या नहीं मारूं? अच्छा, ट्रक ना मारने का मतलब क्या है? शायद ये भी पकड़ा जाएगा, ऑपरेशन खत्म हो गया है, बेस्ट कंडीशन में ऑपरेशन फेल हो गया है, कई महीने की तैयारी गारत हो गई है, दोबारा तैयारी करो कई महीने तक। एट स्टेक क्या है? ये ऑपरेशन, और आपने जो करना है वो क्या करना है? अगर ऑपरेशन को निपटाना है अभी, तो आपने एक बेगुनाह इंसान को अपने ऑपरेशन में तहते चढ़ाना है। सही। अच्छा, दो तरफ की दो साइड्स क्या है? दो साइड्स ये हैं कि एक बेगुनाह तो मरेगा लेकिन मुल्क तो आजाद हो जाएगा ना मैरीन से। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि भाई, ये जो तुम एक बेगुनाह को मार रहे हो, इसके ऊपर दलील क्या है तुम्हारे पास? ठीक है कि वो पर्देदार खातून नहीं है, शायद मुसलमान भी ना हो, लेकिन खून तो मोहतरम है, बेगुनाह को मार दिया, आप होते तो क्या करते? इस औलवियत का तायुन करना आसान है। सही है। जब वहां जो हिजबुल्लाह का कमांडर था, उसने कहा नहीं छोड़ दो, ऑपरेशन खत्म, कैंसिल कर दो। उसने कहा कई महीने तैयारी हुई है, खत्म कर दें? कहने लगा हां खत्म कर दो, मैं रिस्क नहीं ले सकता मेरे कमांड पर एक बेगुनाह औरत मरे, मैं नहीं लूंगा। उसके दिमाग में क्या है? उसके दिमाग में है कि अल्लाह के रसूल ने कहा था जंग में भी बेगुनाह को नहीं मारना है, औरत और बच्चे पे हाथ नहीं उठाना। हत्ता रसूल खुदा ने कहा था अगर औरत तुमको गाली भी दे ना, क्योंकि उसके बड़ों को तुमने मार दिया मर्दों को, तुम उस पर हाथ नहीं उठाना। कितनी बेदर्दी से हमारी खवातीन को मारा इन्होंने रोड पर, जिसने मारा उसने रसूल खुदा का यह फरमान नहीं पढ़ा था कि जंग में भी औरत के हाथ नहीं उठाना? लेकिन नहीं पढ़ा होगा क्योंकि उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, खैर वो दीन के खाते में बाद में डाल दिया होगा किसी ने। इसने कहा कि नहीं ऑपरेशन खत्म करो, वापस आओ, एक औरत के खून से हम हाथ रंगीन नहीं कर सकते। तो वो जो ट्रक वाला था वो बैठ गया कि ठीक है मैं तो कमांड का फॉलोअर हूं, वो तो कह रहा है कि नहीं वापस लाओ। उसने ट्रक रोक लिया, उसने कहा ठीक है मैं मौका मिलता मैं ट्रक लेके बाहर निकलता हूं। अभी वो बात कर रहे थे, एक और गाड़ी अंदर गई जिसके अंदर उन मैरीन्स के बॉसेस बैठे हुए थे, औरत सामने से हट गई, उसने कहा आप जाइए। सही है। तो इसने कहा कि हमें एक खून के एहतराम पर चार दुश्मनों के सरदार मिले। सही है। ये एतकाद हमें है नहीं है? हम में नहीं है ये। हम क्या करते? हम ये कहते हैं कि अगर इस औरत को बचाने के चक्कर में रह गए ना, तो फिर तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी, हम चल ही नहीं सकते। हम ये कहते, बस अगर मैं किसी से कहूं कि भाई दूसरों की प्रॉपर्टी का ख्याल रखो, जब कोई बैनर लगा रहे हो तो देखो दूसरों की प्रॉपर्टी में मत लगाओ, दूसरों की प्रॉपर्टी को हाथ लगाना हलाल नहीं है हमारे लिए। तो उनसे कहेगा मौलाना अगर इस तरह से आप करते रहे ना तो हमारी मजलिसों का कोई ऐलान हो ही नहीं पाएगा, आपकी मजलिस का भी नहीं हो पाएगा, यही कहेगा ना। इस मसलहत की खातिर क्या करना चाहिए हमें, इससे क्या गरज कि किसकी दीवार राजी है या नहीं, लगाओ जैसे भी लगाने लगा दो। अच्छा ये जो दूसरी की प्रॉपर्टी पे तजावुज किया इसकी कोई शरी दलील है हमारे पास? नहीं है, कोई बात नहीं, हमने अपना फैसला कर लिया खुद से। इस तरह दीन बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम है हमारी। अच्छा ये जो प्रायोरिटीज डिफाइन की जाती हैं ये किसका काम होता है? आम आदमी कर सकता है ये काम? मोस्ट प्रोबेबली नहीं, एक्सपर्ट्स का काम है। एक्सपर्ट होते हैं ये डिफाइन करते हैं भाई यहां पर प्रायोरिटी क्या है, ये करना है या ये करना है। अच्छा अगर वो एक्सपर्ट्स नहीं है या उन एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया है या उनकी राय को अहमियत नहीं दी गई है तो ये प्रायोरिटीज कौन डिफाइन करेगा? जो भी ऑन स्पॉट खड़ा होगा, मुमकिन है 18 साल का बच्चा हो, मुमकिन है 26 साल का जवान हो, मुमकिन है 55 साल का मादपरस कोई बूढ़ा हो, कोई भी खड़ा हो वो कर लेगा। अच्छा एक और मुश्किल है, ये जो प्रायोरिटीज डिफाइन करेगा और जो काम अंजाम देगा ये आखिर में किसके खाते में जाएगा? ये दीन के खाते में जाएगा, ये शियत के खाते में जाएगा। शियत का कोई ताल्लुक था इससे? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन चूंकि फैसला इस बंदे खुदा ने कर दिया है अब ये हमारे खाते में आएगा। जिम्मेदार कौम ये करती है? नहीं, जिम्मेदार कौम कभी भी ये काम नहीं करती। जिम्मेदार कौम क्या करती है? प्रायोरिटीज तय करती है हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। दो चीजें टकरा गई, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। आप कहेंगे भाई ये तो आप लोगों का काम है, आप कर लें, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। पता नहीं सिप्ते जाकर साहब का जनाजा था, किसका जनाजा था, दफना के वापस आ रहे थे वादी हुसैन से, वापस आते हुए एक टर्न आता है जिसके बाद लेफ्ट पे आप टर्न करें तो मलीर कैंट की तरफ जा रहे होते हैं आप, उसके नजदीक पब्लिक काफी खड़ी हुई थी। उससे पहले किसी ने फोन पे इत्तला दी कि आगे चूंकि आते वक्त जब आ रहे थे तो पेट्रोल पंप को कुछ को आग लगा दी थी, कुछ ट्रक्स जला दिए थे, जिन्होंने जलाए थे उनको मैंने खुद आंखों से देखा था, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं था, वो हमारे बीच में आके जला रहे थे। मैंने दो चार लड़कों से कहा भी कि इनको जाके पकड़ो, इनको एक दो हाथ लगाओ कि भाई ये क्या कर रहे हो, हमारे नाम के ऊपर क्यों हमारे खाते में डाल रहे हो ये। खैर वो इधर उधर हो गए लेकिन ठीक ठाक जला जुलू के वापस गए थे जनाजे को लेकर। अब वापस आ रहे थे तो जिनके जले हुए थे वो तैयार खड़े थे, सही है। अब ये जो जनाजे को दफनाने के बाद वापसी थी ये हैपेजर्ड होती है, अब वापसी पे तो जुलूस नहीं होता ना, वापसी पे हैपेजर्ड होता है, वो हैपेजर्ड होते होते यहां तक आ गए जहां पे मलीर कैंट का टर्न था। अब यहां पे लोग खड़े हुए, हम भी वहां पहुंचे, इतला आ चुकी थी सामने लोग तैयार हैं और हमारा एक बंदे खुदा पुलिस ऑफिसर जिसको शायद आप जानते होंगे वो ये रिक्वेस्ट भिजवा चुका था कि इनको यहां से मत आने देना क्योंकि वो लोग तैयार बैठे हैं और हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो तैदाद में बहुत ज्यादा है। ऑल्टरनेट क्या था? ऑल्टरनेट था कि आप सुराब बोर्ड से मत गुजरो, आप मलीर कैंट से टर्न लो उल्टे हाथ पर, उल्टे हाथ पर जाओ सफूरा गोट से होते हुए नीपा चौरंगी अंचोली आप अपने घर पे, मामला खत्म। अच्छा ये कोई जुलूस था क्या? नहीं। जनाजा साथ था क्या? नहीं। उल्टे हाथ पे मुड़ने में क्या हो रहा था? मैं वहां पे खड़ा था, मैंने देखा, मैंने अर्ज किया, मैंने कहा भाई हमारे यहां पर उल्टे हाथ पे टर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे लड़के खड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा मौलाना अब हमारी क्या जो जुमला इस्तेमाल किया था मेरे दिमाग से निकल गया, लुबे लुबा गया था, अब ये हमारी नाक का मसला है, अब जिंदा है या मुर्दा है हमने यहीं से जाना है। मैंने कहा भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं आपसे कह रहा हूं यहां से जाना चाहिए। उसने मुझसे कहा मौलाना आप भी बेहतर है कि आप फौरन चले जाए वरना आपका फिर हम जमानत नहीं दे सकते, यानी हम आपके साथ बेहतरामी करेंगे, आप तो अगर तशरीफ ले जाना चाहते हैं तो आप तशरीफ ले जाएं। हम मैंने कहा हाँ मैं जाने को तैयार, मैं मुड़ा और वहां से चला गया। दो शहीद 12 जख्मी, ये हमारी औलवियतों के तायुन का नतीजा था उस दिन। अच्छा ये औलवियत किसने तायुन की थी? वहां पे कड़े चंद जवानों ने, उनको दीन इस्लाम ने हक दिया था। अगर मैं 30 साल से इस मकतब का तालिबे इल्म हूं, कम से कम मेरी बात यहां पे सुनी जानी चाहिए थी या नहीं सुनी जानी चाहिए थी? कम से कम यही सुन लो कि भाई मैं कम से कम 30 साल से तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तालिबे इल्म हूं इस मकतब का, मेरी बात तो सुन लो कम से कम इस मामले में तो सुन लो। अच्छा तुम कहते हो तुमको स्ट्रेटेजी ज्यादा आती है, तो मैं इस स्ट्रेटेजी का ही स्पेशलिस्ट हूं। 17 साल से 20 साल से तुम मेरे एनालिसिस सुन रहे हो, किस दलील की बुनियाद पर तुमने फैसला किया है? जिसका नतीजा क्या निकला है, 2 शहीद गए 12 जख्मी हुए, 10 या 12 मेरे जहन से निकल रहा है। ये किसने कीमत देनी है इसकी, कौन जिम्मेदार था इसका? ये हमारी मुश्किल है। औलवियत का तायुन नहीं है, जिसके पास औलवियत को मुयन करने का इख्तियार नहीं है वो ये तय कर रहा है, और दूसरे की सुनने को भी तैयार नहीं है। चलिए आप पहले भी यही कर रहे थे लेकिन कीमत खून में नहीं देनी पड़ती थी, अब भी यही करेंगे कीमत खून में देनी पड़ेगी। इस खून का जिम्मेदार कौन है?